वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिं भुक्त्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी निष्ठां प्रणमाम हा देवी का तू भर गदगदयाचा जाते निपत्त भोगिदं भवति अस्य प्रसादमन्धस्य जनस्य गन्धर्वके पवदने अङ्गश्यामलिं कथाभिरन्तो मन्दे जटं जागुरोचि साङ्विदधतं पत्तं वरत्तस्य वृन्दारण्य निवासिनं हृदिरसद्गामानुगामोदरं राधायिन्दाहं भक्त्याभिहीनापराधं चित्त्वाश्च कामादिकं कृपामयी गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यपायन्मानं भिक्षुनन्दं कृपां गोदिर्जा परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमा श्रीचैतन्यमनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति यं प्रपूजन्तं द्वैपायनो विरहकर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतरिपयं तवैवास्मि सर्वैवास्मि भजामि राधाम स्मराधाम वदामि राधाम करुणाधराग्रं ततो मम नास्ति भक्त वक्त वध के संबंध में जो हमने शिक्षा की बात कही थी कौन कौन सी बात बतलाई थी और सब बातें बतलाई थी ये सब बातें बतलाई स्वनिष्ठ किसको बतलाया था बतलाओ प्रारंभिक जो गुण हैं जो भक्ति के साथ में आते होने पर उनको भी भक्ति कह देते हैं स्वरूप सिद्धा सिद्धा ये सब तो बोलो
ना
रूपता भक्ति नहीं है स्वरूपता भक्ति नहीं है जैसे श्रवणम कीर्तनम वंदनम ये सब स्वरूपता भक्ति है ये नहीं है किंतु भक्ति के साथ में आचरित होने पर ही उनको संग सिद्धा कर भक्ति अन्यथा जैसे दान है परोपकार है अकृत द्रोह बदान्य मृदुभाषी सूची अकिंचन ये 25 में अतिनादपि सुनी तरोरपि सहिष्णुना अमानी मानव ये सब ये भक्ति नहीं है। सच बोलना भक्ति नहीं है, उपकार करना भक्ति नहीं है। किंतु जब भक्तिमान आदमी के साथ में जब इनका आचरण किया जाता है भक्ति के साथ में तब ये संगठित है। इसलिए ये कर्तान बजाना खोल बजाना मृदंग खूब जोर से ये स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है। किंतु कीर्तन के साथ में भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन के समय में ये सहायता करते हैं तब ये इसलिए इसको ऐसा करना चाहिए जब कीर्तन हो रहा सुंदर मधुर शब्द से कीर्तन के अनुगत होकर के ये बजे तब तो ये ठीक हो आने तो धपा धप धमा धम चलने लग गया बस वही प्रधान हो गया तो तब 50 आदमी मिलकर के मजीरा को बजाओ और टीन बजाओ या मृदंग बजाओ डंफ ले लो खूब शोर करो और कीर्तन मत करो उसमें हरे कृष्ण तो हो जाएगा कीर्तन। किंतु कुछ भी न है केवल हरे कृष्ण करो बेसुरा भी करो तो भी कीर्तन हो जाएगा। बुझ करके प्रवचन रोज इसलिए होते हैं कि लोग समझ करके हृदय में धारण कर सकें। यदि हृदय में धारण नहीं कर सका अभी व्यक्ति नहीं हुई दूसरों से फिर उसको बोल नहीं सकते तो सुनना ठीक नहीं। इसलिए दूसरों से क्रमशः धीरे 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 जो सुनेंगे उसको दूसरों को भी अभी व्यक्ति के साथ में बताए। था स्वनिष्ठ परिनिष्ठित और सब विषय में इसका विचार होगा। स्वनिष्ठ होगा वो स्थूल दर्शी होगा गुरुकरण में भक्ति के पालन में अनर्थों के दूर करने में सब में ही स्थूल दर्शी अनुष्ठान पर अधिक जोर देगा। हम लोग पुरुषोत्तम व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं वो कहेगा जब दिन में कितनी बार खाते हैं एक बार या तीन बार उपवास करते हैं और इन सब पर अधिक जोर देगा। तीर्थ यात्रा में अधिक जोर देगा हरि कथा श्रवण कीर्तन पर जोर नहीं देगा। किंतु शास्त्र का उद्देश्य मूल है श्रवण और कीर्तन स्मरण इस पर जोर अनाधिकारी इस पर नहीं आएगा क्योंकि धीरे धीरे उसको आना है इस पर। तो इनका भार जो लेकर के चलता है वो भूल कंकर भक्ति राशि में जितने
अनर्थ
बहुत प्रकार के चार प्रकार के अनर्थ और एक एक चार चार प्रकार के ये 16 प्रकार के अनर्थ उसमें बतलाए गए। भजन दर्पण में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने
भजन रस
भजन रस कृष्ण का कृष्ण के मुख में दो दो बार विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भी बतलाया उनको आनंदित करने के लिए उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण अब कुछ अपने पैरों पर चल करके गोपियों के घरों में भी आना जाना आरंभ कर दिया है। अपने लिए नहीं भगवान की सारी क्रिया भक्तों के विनोद के लिए और भक्तों की सारी क्रिया भगवान को विनोद को करने के लिए। भगवान की कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं होती भगवान की क्रिया विशेष करके कृष्ण की क्रिया असुरों के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, साधारण भक्तों के लिए भी नहीं होती, नहीं होती। वो किनके लिए होती है? ब्रज भाव भावित भक्तों की प्रसन्नता के लिए होता है। उसमें असुरों का संहार हो जाए या साधारण भक्तों को कुछ आनंद हो जाए वो दूसरी बात, किंतु उनका उद्देश्य है। नहीं समझ में? केवल मात्र ब्रज के भक्तों को आनंद विधान करने के लिए ही चोरी से लेकर मिथ्याभाषित से लेकर जो कुछ भी उनका है, कहा था ना यशोदा मैया ने पूछा, तेरा भैया कह रहा है तूने मट्टी खाई, और कृष्ण ने कहा कि मट्टी मैंने नहीं खाई। जैसे ये लड़के बोल रहे हैं तो बोलने दो मात मैया, इनके बात पर विश्वास मत करो, इनसे तो हमारा विवाद हो गया इसलिए ये हमारे विपक्ष में ये आ जाता है। अब तो दाऊद भैया आज उसी का पक्ष ले रहे हैं, यदि तुम्हें विश्वास न हो तुम मेरे मुख को दे सकती है। जोग माया ने प्रस्तुतिकरण कर दिया पहले से, कृष्ण की कोई भी बात झूठी न हो। कृष्ण सत्यम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि सत्यस्य निहितम्
सत्यस्य सत्तात्मक सत्यनित्रम सत्तात्मकम् तं शरणं प्रपद्ये।
तो कृष्ण तो सत्य की साक्षात मूर्ति है, कोई भी मिथ्या वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी जो क्रियाकलाप है अथवा मुख से बोलने से अथवा उनका तो व्यवहार आचार कभी भी असत्य नहीं हो सकता। जो मैंने कहा कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और वो जोर देने तेने मिट्टी खाई, कृष्ण ने कहा मैया हमारी मुख देख ले, मैया मुख देख ले, यदि मुख में कहीं भी मिट्टी यदि मिल जाती तो फिर क्या होता, कृष्ण असत्य हो जाते। योग माने यहां पर यह दिखलाया, कोई चीज खाई जाती है बाहर से, आराशन है, बाहर में कोई चीज हो उसे उठा करके मुख के अंदर में भीतर में देना का नाम खाना है। अपने अंदर की चीज कोई खाता है? तो योग मैंने देखा ये सेवा करने का एक उत्तम समय आया है, इसलिए कृष्ण भी न जाने यशोदा जी भी देख लें ये मट्टी नहीं खाया, और उनका प्रेम का रिन्यूअल भी हो जाए, पुनर्वर्तन भी हो जाए, सब काम एक साथ में हो जाए। हमारे प्रभु कभी भी झूठा न हो, क्योंकि झूठा है ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया कृष्ण को पता नहीं, और उनके मुख विवर में केवल इतनी छोटे से मुख में पेट ओठ नहीं मुख में ही देखा। असंख्य ब्रह्मांड नदी भूमि पृथ्वी जो कुछ है, एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को दे, जैसा काव्य सुंदरी ने कभी देखा, अर्जुन ने थोड़ा सा आंशिक देखा, दुर्योधन ने भी थोड़ा सा पीछे से देखा, दुर्वासा जी ने देखा, पन्न मुनि ने देखा कुछ थोड़ा सा, आज यशोदा जी परिपूर्ण रूप से देख रही। कृष्ण के मुख में जो कुछ विश्व ब्रह्मांड जो मिट्टी नाम की कोई चीज हो भी सकती है, अब मट्टी के जितने भी विकार हो सकते हैं उन नदी नाला वृक्ष पहाड़ पर्वत सब कुछ को मुख के अंदर में देखा, बाहर से लेकर के मिट्टी खाने की कोई जो बाहर में कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है सब उनके अंदर कोई चीज बाहर उनको दिखी नहीं। और देखी एक जसोदा नहीं, कितनी जसोदा उसमें। उसने देखा आकाश, तारे, सब कुछ देखा। कितनी कितनी कल्पकी, कितनी कितनी लीलाओं को भी उन्होंने देखा। कितने शंकर, कितने क्या क्या उन्होंने ब्रह्मा इत्यादि को देखा। कहीं विश्व का सृजन हो रहा है, कहीं विश्व उनके मुख में जा रहा है। सब कुछ देख करके रील घुमा। सिनेमे का जो रील होता है ना, वो तो एक पतली सी छोटी सी कोई लंबी सी रील होती है। उसका जो जो भाग लाइट के सामने आता है वो देखता है, नृत्य करता है, सब कुछ होता है। और उसके साथ में स्वर को मिला देते हैं, इसलिए वो बोलने वाला सिनेमा बन जाता है। उसमें अपना कोई स्वर इत्यादि है। एक आदमी बैठा तो उसके कितने चित्र हैं उसमें, लाखों चित्र मिलकर के एक आदमी का बैठना और उठना और नृत्य करना होता है। तो ये रील जब चलने लगा, चलते चलते देखा और भयानक अवस्था उनकी हो गई, कुछ बेहोश होने लगी। देखा, अरे ये तो पृथ्वी लोग हम आ गए, अरे ये तो ब्रज आ गया, ये तो गोवर्धन इत्यादि सब दिख रहा है, अरे ये तो आ गया एकदम वृंदावन आ गया, ओ ये तो गोकुल है, ये तो मेरा घर है और इसी में कृष्ण खड़े हैं। और जसोदा में मुख ऐसे देखे, अरे ये क्या देख रहे। इतने में देखा कि मैं बाहर खड़ी हूं और कृष्ण का मुख वैसा ही, और मुख उसने बंद कर दिया। बस आंख बंद करके ध्यान करने लग गए। मिट्टी कहीं नहीं मिली हाथ में। कृष्ण ने झूठ कहा या सच कहा, मिट्टी खाई कि नहीं, ये एकदम विस्मरण हो गया। नई लीला आरंभ हो गई, ये मैंने क्या देखा, पटपट परिवर्तन हो गया कथा का। और उसने ने मिट्टी खाई कि नहीं, झूठ बोला कि नहीं, सत्य बोला कि नहीं, क्या हुआ, सब कुछ विस्मृति हो गई। मैंने क्या, ये भूत की माया है कि डाकनी पिशाचनी इत्यादि की दृष्टि है, नजर लग गई बच्चे को, या मुझे खुद ही नजर लग गई, या दैवी माया है, ये तो यहां पर हो नहीं सकती। हम तो नारायण ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो ये क्या हुआ। हाथ पकड़ करके बच्चे की अंगुली, बच्चा उनको उनका उनकी अंगुली पकड़ ली बच्चे ने। और कुछ ये चिंतित हुई से लेकर के चलने लगी, अपने स्थान पर आई। आंगन की बात है ना, उसको घर ले आई। इतने बच्चे ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, कैसे स्वभाव पूछूं, और मैया मैया कह करके स्तन पाने के लिए पैर पटकने लग गया और हाथ ऐसे कर दिया गोदी में जाने के लिए। बस सब कुछ भूल गया, एकदम पूरी रूप से विस्मृत हो गया। अब जो कृष्ण ने जो कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये बात सत्य ही की झूठ हुई। मिट्टी कहां से खाई, खाए खोने कोई बाहर की चीज तो कृष्ण के बाहर है, उसी में लिखा गया है नजस्य अंतर बहिर, जिसका कोई अंतर नहीं है, बाहर नहीं है, उसको एक साधारण रस्सी कैसे बांध सकती है। अंतर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, जिसके भीतर भी नहीं है, बांधी किसको चीज जाएगी, जिसके बाहर से कोई बांधे तो उसका बाहर में कोई चीज है ही नहीं है, असीम अनंत है। और भीतर से कोई आदि और अंत ही नहीं जिसका, फिर उसको कैसे बांधा जाएगा। तो ऐसे ही आज जसोदा जी ने देखा, ये हम लोगों के, ये लीला हुई हम लोगों के लिए कुछ शिक्षा के लिए। कृष्ण जी का और उनके साथ में यशोदा जी के साथ में तो वही मिट्टी खाया कि नहीं, और इसके बाद ये होकर के खत्म हो गया। अब हम लोगों के लिए जिसका अंत अब नहीं, बाहर नहीं, अब हम तटस्थ होकर के विचार करते हैं, अब तब इसमें कुछ शिक्षा है। इसलिए कृष्ण का कोई भी व्यवहार, कोई भी बात कभी भी झूठी नहीं है। स्थूलदर्शी कहते हैं भक्त लोग कृष्ण झूठ बोले, भक्त कभी भी झूठ नहीं बोलता।
सखा लोग जो कहा मैया ये
कभी नहीं, कभी कोई हो ही नहीं सकता जी, देखने का सुनने का भ्रम है।
इसमें क्या होगा
अभिव्यक्ति का?
सखा लोग ने कहा मैया ये,
जब ऐसे अधिकार में तुम लोग आएगा तो देखेगा वहां पर कोई अशिक्त नहीं भक्तों के जीवन में, कभी भी नहीं। युधिष्ठिर महाराज स्थूल दर्शियों को समझा भी तो नहीं जा सकता, नहीं समझेंगे क्योंकि अधिकार। युधिष्ठिर महाराज जी घोर अनीति का कार्य किया, एक तो जुआ जो दूसरों को नहीं खेलना चाहिए जुआ खेला। जुआ कौन खेलते हैं? जुआरी, जिनकी बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट लोग जुआ खेला। जुआ में अपना सब राज्य हार गया कोई बात नहीं, भाइयों को क्यों हार गए? भाइयों का क्या अधिकार है? भाई किसी अपने संपत्ति का बराबरी का उत्तराधिकारी होता है, उनको संपत्ति में जितना अधिकार है। वो कहते थे हमारे भाग का जितना राज्य भाग था वो मैं हार जाता हूं। अपने भाइयों का सब भी राज्य क्यों हार गए और अपने भाइयों के ऊपर में उनका क्या अधिकार है? पिता का माता का कुछ भाइयों पर अधिकार हो सकता है ना, किंतु भाई का भाई के ऊपर में क्या अधिकार है? उसके अर्थ पर, उसके जीवन पर, उसके और चीजों पर। अच्छा हाँ, इतने व्यसनी बुद्धिहीन कि अपनी स्त्री को भी हार जाते हैं और हारने के बाद में उनको स्त्री को नंगी करते हुए पकड़ करके जुड़ा पकड़ करके खींचता हुआ रजस पलास्थम नग्न करता हुआ घसीटता हुआ ला रहा है। भाई कुछ क्रोधित हो गए तो भाई, भाई लोग कह सकते थे आपने ये क्या कर दिया, तुमने क्या, आपने नहीं कह करके कहते तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुमको हम बड़ा भाई नहीं मानते हैं, तुम्हारा हमारा कोई भी संबंध नहीं है, तुमने ऐसा दुर्नीति क्यों किया, स्त्री क्यों हार गई? वो कहती मैं आपकी स्त्री केवल नहीं हूं, मैं पांचों की, आप हारने वाले कौन, मुझे क्या कह लेते ने? तो ये पांडवों ने या द्रौपदी ने ऐसा क्यों नहीं कहा, इसका कारण क्या है? अच्छा, ये लोगों ने नहीं कहा, कृष्ण ने और व्यास देव जी ने जो महाभारत के रचयिता है और कृष्ण जो स्वयं उनके सखा है, कृष्ण ने क्यों नहीं कहा? आद्यपान्त महाभारत ने कभी नहीं किया जो युधिष्ठिर तुमने ये दुर्नीति का कारण, जुआ खेला और द्रौपदी को हार गया, भाइयों को हार गया, खबरदार ऐसा मत कभी करना, कहा कभी? अच्छे व्यास जी जो समस्त शास्त्रों के और धर्मों के रचयिता और प्रतिष्ठापक, इनके मुख से एक बार उनके लिए अपशब्द क्यों नहीं निकला? अब इससे अधिक क्या बुरा हो सकता है? हो सकता है क्यों नहीं कहा, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो बुरा चीज था ही नहीं, किंतु ये बुरा चीज उसमें नहीं था, ये कौन कहेगा, स्वनिष्ठ कहेगा या परनिष्ठित कहेगा? एकांतिक वाले कहेंगे, दूसरे नहीं कहेंगे। और तो को नहीं समझाएगा, स्थूल व्यक्ति लोग इसी को लेकर के आलोचना करते हैं, भला बुरा, पाप पुण्य अच्छा बुरा, यही भालो यही मंद,
यही सब भ्रम,
यही सब भ्रम, विचार किया कौन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, यही भाव यही मन यही प्रण। तुम जो ये कहता है साधारण व्यक्ति, ये अच्छा है ये बुरा है, युधिष्ठिर जी ने बुरा किया, उन्होंने हरिश्चंद्र ने अच्छा किया, ये भ्रम है। द्वैता द्वैत बात है
ना,
कृष्ण उसमें भी यही मनोधर्म, ये खराब है ये अच्छा है, ये सब मन का भ्रम है। जो कृष्ण कर रहे हैं भक्त कर रहे हैं, वही एकमात्र सत्य है। सत्य की परिभाषा यही है, कृष्ण कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। कोई भी चीज, गोपियों को वस्त्र ले लिया, नंगी चलिया, बड़ी मुश्किल से पानी में रह नहीं सकी, ठिठुर करके मरने वाली है, प्राण यहां तक आ गए और वो अड़े हैं, चले आओ तुम लोगों ने वरुण देवता के यहां, वरुण देवता के यहां तुमने अपराध किया, युक्ति निकाल लिया, कोई युक्ति ये नहीं, और कह जल्दी आ जाओ, मरना चाहते हो तो मरो, तुम हमें क्या करो, और नहीं बचना चाहती हो चली आओ। तो वो आई, सिर से अपने अंगों को ढक लिया, हाथों से अपने और शक्तियों को ढक लिया, ऐसे नहीं हाथ जोड़ करके सिर से प्रणाम करो, ये कोई बात है? कौन सभ्य जगत का आदमी ये कहेगा ये उन्होंने ठीक किया? कोई भी कहेगा सभ्य आदमी? किंतु एकांतिक वाले विचार कर, कितनी प्रेममयी लीला है, इस शरीर का क्या मूल्य है, और इसी शरीर से यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो पहाड़ सोपान है प्रेम राज्य का। किंतु उनके समझ में नहीं आता और न कभी आएगा, यदि सौभाग्यवशतः कृष्ण के भक्तों का संग हो तो ये चीजें उन लोगों को समझ में आएगी, नहीं तो कोटि कोटि जन्म भी वृथा चले जाएंगे, ये सब सत्य असत्य का निर्णय वो नहीं कर सकते। इसलिए ये जो दृष्टि है, कोई कोई बिरले भक्तों को जो भगवान की असीम कृपा पात्र हैं, गुरु की करुणा हुई है, वो लोग इसका सामंजस्य करके ठीक रूप में दर्शन करेंगे, और नहीं तो इसी में मरेंगे, अशांत होंगे और दुख मरेंगे। शांति इन लोगों के लिए नहीं है, भाव भक्तों को शांति अवर्त कालोत्तम दृष्टि मानुषता उन लोगों के लिए। हम लोग भी भगवान की करुणा, गुरु वैष्णव की करुणा से उसी तरफ में एकांतिक रूप में बढ़ें, कोई चीज में भी दोष दृष्टि न आए, ये दोष है, ये गुण है, ये है, हमको तो भक्ति की तरफ में चलना है, चित्त अशांत हो जाएगा उतना समय बर्बाद हुआ, इसलिए इसके तरफ में हमको नहीं चलना, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है एकांतिक भक्तों को ये सब चिंता करने के लिए। इसलिए कृष्ण सत्य हैं, कृष्ण की बातें सत्य हैं, उनका आचरण शिष्ट है। योग माया ने कृष्ण के अनजाने में भी ये जगत को दिखलाया, यशोदा जी के दिखलाने की बहाना। इसलिए कृष्ण का कोई भी आचरण कपटपूर्ण, असत्य, अव्यवहारी, अशिष्टतापूर्ण, अन्याय, दुराचार, व्यभिचार नहीं, इस चीज को खूब अच्छी तरह से विश्वास के साथ में चलिए। नहीं हो रहा तो नहीं समझ में आ रहा, बस यहीं तक। तुम लोग कभी भी संतों के चरित्र पर भी ऐसा ही समझना, संत चरित्र सदा सदा ही पवित्र, जे निंदा
जे निंदे हिंसा
हिंसा करी
भक्ति विनोद नासंबसे सदा थके मौन धरी।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो सुंदर, तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का चरित्र शुभ कपासु के समान होता है, कपास का जो होता है ना रुई, अत्यंत स्वच्छ पवित्र, देव के कार्य में लगने वाली होती है, और उसमें कीड़ा लग जाए उसे खा करके इकट्ठी करके काला सा उसमें दाग लगा दे तो गड़बड़ है, वो देव काम में नहीं लगता। उसी प्रकार से संतों का चरित्र सदा पवित्र होता है। जो हिंसा करते हैं, एक तो समझ में नहीं आया इसलिए निंदा करते हैं हिंसा करके, तो उनके साथ में संभाषण नहीं करता भक्ति विनोद ठाकुर जी का, वो समझते हैं। इसलिए वैष्णव के चरित्र के प्रति कभी भी ऐसा मत करना, उनके चरित्र अगम्य अपार कृष्ण जैसे होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब कृष्ण झूठ नहीं बोलते, 50 बार चोरी करते हैं, गोपियों को बुलाकर हमने कब बुलाया, कब बुलाया, अपने अपने घरों में पधारिए आप लोग, पतियों की सेवा करें, बड़े बड़े धर्म उपदेश दे रहे हैं, बड़े अपने आप पर साधु बन रहे। गोपियों ने कहा कि आप साधु कब से बने, बचपन से ही तो हम आपको देख रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण के लीलाओं को समझने की चेष्टा करनी चाहिए भाई, और जो प्रवेश करना थोड़ा सा भी सीख जाए बड़ा तब तक पर आनंद होगा। क्या एक है कृष्ण चैतन्य दया करो, चैतन्य दया करो विचार विचार कर। लीला कथाओं में पढ़ने में उतना आनंद नहीं है, अनुभूति के साथ में यदि अनुभव करते हुए पढ़े ना पर्पत में, आनंद से हृदय उच्छलित होता चला जाए, पद पद पर एकदम बर्धन होता है। ऐसा ही पढ़ना, कोई भी चीज, कोई एक श्लोक ले, कोई एक शब्द है, कोई भी शब्द पर विचार करो, प्रेम ही पर विचार करो। प्रेम की परिभाषा नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जाओ, महाभाव महाभाव के ऊपर भी, और विचार करो तो उसका उदाहरण एक एक खोल करके कृष्ण पर और भक्तों में लगाओ, देखो जी कितना आनंद मिलता है। फुर्सत नहीं मिलेगी इधर उधर चिंता का। तो इस तरह से कृष्ण की लीलाओं को सुखदेव जी अनुभव कर रहे हैं, बतला रहे हैं परीक्षित महाराज जी, बड़े आनंदित हो रहे हैं, कृष्ण रस छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों जैसा भी थोड़ा सा कभी कभी आनंद मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, अभी छोड़ करके भागेंगे 10 मिनट के बाद, मैं भी श्रोता भी। एक तुरहीन थी, तुरहीन जानता है
फल जितना ही,
तुरहीन मैंने क्या कुंजड़ीन, कुंजड़ा कुंजड़ीन सुना है कभी, केवल सब्जी ही नहीं, कोई भी चीज टोकरी में लेकर, बड़ी बड़ी टोकरियों में फल मूल सब ली, और गांव में जाकर घर में बैठ गई, और बड़े प्रेम के साथ में आलाप करती हुई बहलाकर फल देख करके उसके बदले में चावल दाल गेहूं चना उसका दर मान लेगी 1 रुपया किलो फल है, अपने बगीचे का फल है ना, उसको गई मान लिया कि ये बाजार में रेट है 1 रुपया किलो बाजार, गांव में गई गांव में फल उतना मिलता नहीं, देखा जे चना आजकल 6 रुपया दर है किलो, गेहूं 4 रुपया दर है, और दूसरे सवाल कहीं मैं तो सस्ते में इसको बेच रही हूं, तुम्हारे घर में जो अनाज है मैं तौल करके बराबर बराबर दे दूं ना, कितना सहज तरीका। अब बाजार में उसको अधिक से अधिक 1 किलो फल के लिए 1 पौवा मान ले कि चना मिलता है, और वहां पर उसको कितना मिल गया 1 किलो फल का 1 किलो, अब कितना उसको लाभ हुआ, किंतु लेकर के गई है ना 2 माइल 3 माइल 4 माइल तक
घर तक
परिश्रम करके जाती है,
घर तक पहुंचा देते हैं,
जाती है घर में, लोगों से शहर की बातें करती हैं, अपने अपने अनुभव की उनसे भी सुनती हैं, घर का दुख दर्द भी सुनती है, अपना भी कुछ बांट देती है। ऐसे ही एक कुंजड़ी फल विक्रयणी अभी शीत धवल उसके
खिचड़ी के
धवल माने शीत माने कृष्ण, दोनों मिले हुए माने प्रौढ़ा है। कोई वृद्धा एकदम जरा से वृद्धा नहीं हो गई। इधर सुनो खूब ठीक से, गाल पर हाथ मत रखो, मुख पर ऐसे खूब ध्यान दे रही हो, ऐसे एकदम तन करके सुनिए। बहुत सी शिक्षाएं हैं इसमें। केवल बेचने गई और कृष्ण ने देख लिया, रत्न भर दिया, बस यही नहीं, बहुत से इसमें विषय है। जब गंभीर रूप से विश्व विचार कर, भागवत में तीन चार श्लोकों में ही कि कितने में वर्णन कर दिया है, किंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में है एक श्लोक में, किंतु ब्रह्मवैवर्त वर्ग संगीत इत्यादि में ऐसा कुछ विस्तृत वर्णन है। गोपाल चंपू में और आनंद वृंदावन चंपू में भाव नेत्रों से कवि कर्णपुर और जीव गोस्वामी ने इसे देखा, प्रेम में विभोर होकर के उनके हृदय रूपी निर्जर से कुछ ऐसे बातें आई हैं जिससे जगत को मुक्त कर सकते हैं, भक्तों को आनंद में निभा सकते हैं। तो उन्हीं के वर्णन विशेष करके आनंद वृंदावन चंपू और जीव गोस्वामी का गोपाल चंपू, गोपाल चंपू में वो वर्णन धवल और मैंने काला और सफेद, कुछ सुंदरी सी थी। क्यों? शरीर गठीला। क्यों गठीला? जो आदमी परिश्रम नहीं करता, खाता पीता है घर में बैठ करके, रसोई केवल बनाए तो स्थूल हो जाएगा, चमड़े कहीं से झूल जाएंगे युवावस्था में, और सिर पर भार लेकर के गठीला परिश्रम करते हुए श्वेत मुखकण से निकल रहे हैं, और आएगी और जाएगी कितना, 3-4 माइल तक घर घर में बैठ करके, तो क्या होगा? शरीर एकदम गठीला होगा। तो ऐसे सुंदरी थी, गई ब्रज में जाती थी, घर के लोगों से कुछ सौहार्द बन गया था, रोज रोज जाने से होता है, और स्त्रियां वो जल्दी से स्त्रियों में अपना स्थान पैदा कर लेती हैं बैठ करके, काम न रहे भी न, तो ऐसी गोपनीय बातें भी उनके पति के संबंध में, पुत्र के संबंध में, बहू के संबंध में, सब कुछ वो झाड़ झूड़ करके पूछ लेंगी और बता देंगी, कुछ मन में रखेंगी नहीं। तो ऐसे ही वो जाती थी। कृष्ण के जन्म के पहले से ही वो जाती थी, कृष्ण का भी जन्म नहीं हुआ तभी से जाती जा। अब तो कृष्ण उनको यशोदा जी को लाला उत्पन्न हुआ है, और सारा ब्रज उसको देखने के लिए जाता है। उसने बहुत बार चेष्टा की कि यशोदा के लाला को मैं दर्शन करूं, किंतु न जाने क्यों उसका दर्शन ही नहीं होता, या तो कभी सोया रहता है, या कभी मैया एक उसको ऐसे दूध पान पिला करके भीतर में रखती है कि वो कभी दर्शन नहीं होता। जब कुछ बड़ा हुआ भी थोड़ा सा घुटनों पर चलने भी लगा, बहुत चेष्टा, कुछ ना कुछ जरूर विघ्न आ जाता है, दर्शन नहीं। साधक जीव जब भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, औरों को, कंस को, जरासंध को, दुर्योधन को, काल जमन को बिना कारण ही दर्शन उनका मिल जाएगा सहज रूप में, विरोधियों को, किंतु जो भक्त हैं वो चाहेंगे महाराज समुद्र से बहुत दर्शन करने के लिए लाला, किंतु उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं, हिम की आराधना की, हिम के प्रसन्न होने पर उनको भगवान का दर्शन, ऐसे नहीं है। तो बहुत चेष्टा इसने की, नहीं हुआ, बड़ी खिन्न कुछ हो गई। इतना दिन मैंने चेष्टा की और नंदलाल का मुझे दर्शन नहीं हुआ, लाला का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए कुछ सोच रहे। आज वो आई, सुंदर सुंदर फल लिए, फलों में कदंब का फूल पका हुआ, देखा है कभी? खाया? खाया नहीं तो क्या हुआ। कदम्ब का फूल श्रीमती राधिका के अंग जैसा सुंदर पीला था, उसके ऊपर में रेशे से लगे थे, खट्टा मीठा वो होता है, देखने में आदमी लुप्त हो जाए। सुगंध उसे भीनी भीनी सुगंध, यदि वो कहीं रहे ना मधु मधुमक्खियां या कमर जो पहुंच जाए। पीलू फल लिया, केले के सुंदर सुंदर पीले पीले फल लिए, आम के पीले पीले पके हुए फल ले लिए, और भी तरह तरह के फलों से टोकरी को सजा दिया। जानते हैं ना कैसे सजाती हैं और कैसे सजाते हैं आलू वाले, कैसे सजाते हैं आलू केले और मुसब्बी और संतरे, सड़े गले दाग लगे हुए भीतर में रखते हैं सामने, और अच्छे अच्छे सामने सजा करके बोल रहे हैं। यदि आप गोल तोड़ना चाहेंगे हजार पाने पर भी नहीं तोड़े, वो अपना जो पल्ला होता है ना ऐसे लगाए सामने से, और ऐसा उनका दिमाग होता है तेज, ये किसी फल को लेकर के सामने अच्छा वाला ही दिख रहा है, देखो ना कैसा सुंदर, और इधर में वो है पका हुआ सड़ा कर। मान लीजिए आपने किसी तरह से चलाकी चतुराई करके अच्छे अच्छे आलू चढ़ा दिए, तो वो अभी और चढ़ा करके और अभी चढ़ा देगा और ऐसे ऐसे हिला देगा, हिला करके गिरा देगा, नहीं तो हाथ से फेंक देगा। अच्छा अच्छा, और फिर जब देखाएगा कम हो गया तब फिर वो गंदा वाला चढ़ा देगा, आप कितना तक करेंगे। ऐसे वो चलाक चतुर होते हैं, विषय भी बड़े पक्के होते हैं, तो वो भी अच्छे अच्छे फलों को सजा करके आई गोकुल में, आई गोकुल के बाजार में। गोकुल में के बाजार में बेचना उसको अभिष्ट नहीं था, उसको अभिष्ट क्या था,
नंदलाल।
यदि किसी प्रकार से नंदलाल की दृष्टि इस पर पड़ जाए और लुप्त हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा कुछ बिक जाएगा, मैया आएगी। और मेरी भक्ति जो है वो ऐसा भक्ति नहीं है, देखने की लाशा तो जरूर है, लोग कहते हैं कि सुंदर है, किंतु भक्ति अभी वैसी कुछ नहीं है। इस तरह से वो बना करके सुंदर सुंदर फलों को लेकर और गई, फल्लो रे फल्लो इस प्रकार से वो आवाज दे रही है, विशेष करके वो आवाज दे रही उसी गली में जहां पर यशोदा जी का फोन है, उसी में चक्कर काट रही है चारों तरफ। काटते काटते कुछ समय हो गया, सोचा जी से इतना दिन हमने चेष्टा किया कुछ देखा देखा नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है कि एक गाड़ी में वो ठेला होता है चक्के जिसमें चार चक्के होते हैं, उसके ऊपर में छावनी रहती है और उसमें घंटा लटका देते हैं और टन 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 बजाते हैं ना, टन टन बजाते हैं और हवाई मिठाई और सब कुल्फी मलाई, हाँ कुल्फी मलाई बेचने के लिए वो बजाते हैं। बजाने का उद्देश्य जो बच्चे आएंगे भग करके और मैया से जीत करेंगे, बाप से जीत करेंगे, या अपने वो मरकते हैं गोलक में पैसे निकाल कर ले आएंगे और हमारा बिक्री हो जाएगा, इसलिए बजाने का उद्देश्य आवाज दे रही है। उद्देश्य किसी प्रकार से बच्चे आ जाए, मैंने कृष्ण आ जाए और हमारा फल कुछ बिक जाए, उसका दर्शन भी है। बहुत प्रयास किया, थक गई यार, अब नहीं उठूंगी, नंद के द्वार पर आकर के बैठ गई, दो एक बार आवाज दिया, आज यदि नहीं आया तो मैं अपने प्राणों को रखूंगी, इतना दिन हो गया और एक बार भी दर्शन नहीं। कुछ मन में संकल्प और विकल्प करते हैं, कृष्ण से भी रहा नहीं गया नहीं? जो मैंने कहा जैसे अब मिलाना चाहिए दोनों को, कृष्ण आज आंगन में खेल रहे हैं, अब पैरों के बल में खड़े होकर के अब थोड़े चलते, कभी ब्रह्मांड घाट में जब चले जाते हैं, अभी ब्रह्मांड घाट में वो मट्टी खाने की लीला है, उसी के बाद की ये लीला है। तो वो वहीं पर बैठ करके दो एक बार आवाज दिया, कृष्ण आंगन से सुना और देखा, छोटे से बच्चे नंगे से हैं,
झिंगुली पहन,
कमरी में कमर में वो गर्दनी टुनटुनी बंधी हुई है, बड़ा सुंदर दिखते चेहरा। मैया ने ये बांध करके एकत्र कर दिया, उसमें एक मोर पंख और छोटी सी बंसुली, बिना पंख जब से शायद जन्म हुआ तब से ही वो शायद जन्म लेकर के हुआ ना कब से हुआ, बंसी उनको बिछड़ नहीं देखा गया था, अलग बंसी को हाथ में लेकर खेल रहे हैं, बलदेव जी से कभी लड़ रहे हैं, गोपियां लड़ा रही हैं, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तुम बलवान है कि ये बलवान है, और ताली बजाती हैं, कहती हमारा कृष्ण बलवान है, वो कहता है वो बलवान है, और लड़ा रही हैं, और दोनों एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, कभी वो कभी वो। फटाक देखा, फल लो रे फल, बस झट ऐसा ध्यान करके देखा, देख करके देखा पीला, और ये सब फल देखे लाल लाल पीले पीले।